ईश्वर में मन रम जाता है। ऐसे खुशनुमा शाम में आप सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सभी दिव्य आत्माओं का और वैश्विक शांति के दूतों का हम बड़े ही आत्मिक भाव से, बड़े ही प्रेम के भाव से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप सब अपने स्थान पर ही अपना स्वागत, अभिनंदन, सत्कार स्वीकार करिए। ज्ञान सरोवर में, खुशियों के गुलशन में ऐसे लगता है बहार आई है, परमात्मा के प्यार की शीतल फुहार आई है, वैश्विक शांति की चाह लेकर आए हैं आप सब। लगता है जैसे दिव्य फरिश्तों की कतार आई है और ऐसे दिव्य फरिश्ते ज्ञान सरोवर में चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। आप सभी दिव्य फरिश्तों का, मीडिया मनीषियों का आज के इस सत्र में बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं वर्तमान समय में, जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, अप्लाइंग इनर पावर्स टू मीट प्रोफेशनल चैलेंजेस, यानी व्यावसायिक चुनौतियों का सामना करने हेतु आंतरिक शक्तियों का प्रयोग कैसे करें। इस विषय पर आज हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्थान के बहुत ही अनुभवी, बहुत ही तपे हुए तपस्वी राजयोगी भ्राताएं, हमारी राजयोगिनी दीदियां मंच पर आसीन हैं, जो आपको इस विषय पर बहुत अच्छे से समझाएंगे, बताएंगे, गहन अनुभूति कराएंगे। और मैं तो कहूंगी किसी भी सभा की, किसी भी सत्र की शोभा उनके मार्गदर्शक होते हैं, अनुभवी वक्तागण होते हैं और बड़े धैर्य से, प्रेम से सुनने वाले श्रोतागण होते हैं, जो आज दोनों ही यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। तो मैं बड़े सम्मान के साथ उन विचारों को आमंत्रित करती हूँ जो हमारे नजरिए को बदल देंगे। हम आह्वान करते हैं उन मंगल मूर्तियों का जो आज के इस सत्र को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। तो मैं बड़े आदर के भाव से आज के हमारी मंगल मूर्तियों को मंच पर बुलाना चाहती हूँ, जिसमें से दो दिव्य आत्मन मंच पर विराजित हो चुके हैं। उनका आप सभी तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमारे आज के इस इनसाइट सेशन के चेयरपर्सन आदरणीय भ्राता डॉक्टर प्रताप मिड्डा जी, जो बड़े ही देर से, बड़ी ही शांति से आप सबको सकास और शक्ति देते हुए इस हॉल में पहले से ही पीछे बैठे हुए थे। जोरदार तालियों से मैं आदरणीय डॉक्टर प्रताप मिड्डा जी भाई साहब को मंच पर सादर आमंत्रित कर रही हूँ। साथ साथ मैं बड़े आदर भाव से बुलाना चाहती हूँ देवी भ्राता डॉक्टर बनारसी लाल शाह भाई साहब, आप भी मंच पर अपना सम्माननीय स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच मुंबई से राजयोगिनी बी के शकु दीदी जी उपस्थित है, आपका भी मंच पर बहुत बहुत दिल से अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे साथ आज के इस इनसाइट सेशन में वक्तव्य के लिए अपनी वाणी के द्वारा हम सबको उत्प्रोत करेंगी राजयोगिनी देवी बहन बी के डॉक्टर सुनीता दीदी जी, आपका भी मंच पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। दो मिनट हम सभी इस सत्र की शुरुआत प्यारे प्रभु के आह्वान से करते हैं, कुछ पलों के लिए उनके धाम में चलकर शांति का अनुभव करते हैं। कहते हैं हर दिल में जो उजियारा करे, हर दिल में जो उजियारा करे वो नाम है परमात्मा का, शांति और प्रेम से भर दे जीवन हमारा वो धाम है परमात्मा का। तो आइए दो मिनट के लिए उस परमात्मा के धाम में चलकर इस सुंदर सत्र की शुरुआत करते हैं।
सद्भावना अपना कर और दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सबको सुखी बनाना है, अब नई संस्कृति लाना है, अब नई संस्कृति लाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है।
आज का ये मंच मंगल मूर्तियों की गरिमामयी उपस्थिति से सज गया है। रौनक दमक उठती है, नूर फैल जाता है जब किसी सभा में आप जैसे दिव्यात्मन एक साथ उपस्थित हो जाती हैं। तो आइए अपनी अतिथि देवो भव की परंपरा को, इस परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए हम सभी अतिथियों का सम्मान और सत्कार करते हैं। भारतीय संस्कार, सनातन संस्कार और भारतीय संस्कृति हम सबके अंग अंग में रची और बसी है। भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है कि हमारे मेहमान, हमारे अतिथि, हमारे मान्यवर देवतुल्य होते हैं और देवतुल्य आत्माएं जो सर्वस्व जीवन मानव सेवा में समर्पित कर रहे हैं, आज ऐसी विशेष हस्तियां परमात्मा के दिव्य रतन इस मंच पर उपस्थित हैं। मैं अपनी ब्रह्मा कुमारी बहनों से आह्वान करती हूं कि आप आए और हमारे ऐसे महारत्नों का अभिनंदन करें, खुशबूदार फूलों के गुलदस्ते से और अंग वस्त्र पहनाकर परमात्मा याद का बैज लगाकर आप सभी का सम्मान और स्वागत करें। आप सबका सम्मान करके हमें बेहद और अलौकिक खुशी का अनुभव हो रहा है। मैं डॉक्टर रीना, मेरा भी स्वागत किया गया, उसके लिए भी आप ताली बजा सकते हैं। थैंक यू। और जो सम्मान देकर खुशी मिलती है, कहते हैं खुशी के फूल उन्हीं के दिलों में खिलते हैं जो अपनों से अपनों की तरह मिलते हैं, जो अपनों से अपनों की तरह मिलते हैं। तो आज हमने अपनों के बीच अपने प्यारे प्रभु के पवित्र घर में सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत किया। आप सबका भी अपने स्थान पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। शुभ स्वागत, शुभ अभिनंदन। और हम सभी कल से अरावली की वादियों में बसे इस आध्यात्मिक परिसर में, जो बड़ा हरा भरा है, जहाँ ज्ञान की गंगा बह रही है, शांति और पवित्रता का वातावरण है, ऐसे आध्यात्मिक वातावरण में उपस्थित हुए हैं। कल से ही आपको ज्ञान रत्नों से भरपूर होने का अवसर लगातार प्राप्त हो रहा है। वैश्विक शांति के लिए मीडिया की भूमिका विषय पर हम सब चिंतन और मंथन कर रहे हैं और उसी कड़ी में आज का ये इनसाइट सेशन, यहाँ हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम मीडिया कर्मी, मीडिया मनीषी वैश्विक शांति से अपनी आंतरिक शक्तियों को बढ़ाकर विश्व में शांति स्थापन कर सकते हैं। ज्यादातर देखने में आता है कि अपनी आंतरिक शक्तियों का उचित प्रयोग ना करने के कारण ही जीवन में अनेक समस्याएं आ जाती हैं। हम सबका जीवन लगातार हम देखते हैं अनेक समस्याओं से घिरा रहता है। जब मनुष्य के अंदर की शक्तियां, दिव्य शक्तियां या परमात्मा शक्तियां या कहें आत्म शक्ति क्षीण हो जाती है, तो उसका प्रभाव आप सब जानते हैं, परिवार पर, समाज पर और समूचे विश्व पर पड़ता है। विश्व की वर्तमान समस्याओं की जड़ ही मैं कहूंगी व्यक्ति का अहंकार है, उसकी स्वार्थ भावना है, लोभ और लालच है। मीडिया ही वह महत्वपूर्ण कड़ी है जो विश्व की घटनाओं को जन जन तक पहुंचाता है। आप सब सहमत हैं इस बात से? सहमत हैं? जी। मीडिया जिस रूप में घटना और परिस्थितियों को लोगों तक पहुंचाता है, समाज में उस घटना के प्रति वैसा ही माहौल बन जाता है और वैसा ही नजरिया होता है। मीडिया कर्मी स्वयं किसी न किसी प्रोफेशनल से जुड़े होते हैं या किसी संस्थान के अंतर्गत अपनी सेवाएं देते हैं, और कई बार देखने में आता है कि स्वयं की पारिवारिक जिम्मेवारियां भी अपनी अपनी होती हैं। ऐसी परिस्थिति में इनर पावर अर्थात आंतरिक शक्ति का होना नितांत आवश्यक है, जरूरी है। इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए न केवल हमारी आंतरिक शक्ति हमें सक्षम बनाती है, वरन समाज के सामने हमारा जीवन एक उदाहरण मूर्त भी बन जाता है। अगर हम आंतरिक शक्तियों से भरपूर हैं, परमात्मा शक्तियों से भरपूर हैं, तो हम समाज में संसार में रहते हुए भी एक उत्तम उम्दा किस्म का जीवन जी सकते हैं। तो आज के इस सत्र में जैसा कि हमारा विषय है उसी अनुसार हमारे सभी सम्माननीय अतिथि व्यावसायिक चुनौतियों का सामना करने हेतु आंतरिक शक्तियों का प्रयोग विषय पर अपना मार्गदर्शन हम सबको प्रदान करेंगे। बस मैं आप सभी से ये आग्रह करूंगी कि समय की सीमा है, इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए हम आप सबके विचार सुनेंगे। सबसे पहले मैं आदरणीय डॉक्टर सुनीता दीदी का आह्वान करती हूँ और उसके पहले उनके परिचय से आप सबको अवगत कराना चाहती हूँ। आदरणीय राजयोगिनी सुनीता दीदी, आप संप्रभुता के माध्यम से विश्व संप्रभुता विकसित करने की सेवा में लगातार विज्ञान, मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता को एक साथ लेकर स्पष्ट शक्तिशाली विजन रखती हैं। उसी अनुसार आपकी इस आध्यात्मिक सेवाएं चलती हैं। आपने आध्यात्म प्रबंधन पर पीएचडी की शिक्षा प्राप्त की है, आप पीएचडी होल्डर हैं, आप इस बात के लिए ताली बजा सकते हैं। आप 40 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी संस्थान में सेवाएं दे रही हैं। आप एक अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन सलाहकार हैं। आपको अमेजिंग स्पीकर अवार्ड वाशिंगटन डीसी से सम्मानित किया गया। आपने भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर, मॉरिशस और दुबई के अनेक स्थानों का दौरा कर समाज को आध्यात्मिक ज्ञान से और उनके जीवन मूल्यों से अवगत कराया है। आपका व्यक्तित्व बड़ा ही शांति, सहजता और नम्रता, दिव्यता से भरपूर है। आपने अनेक पुस्तकें भी लिखी हैं। आप एक उम्दा किस्म की लेखिका भी हैं। आपको कई सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। लगभग 100 से भी ऊपर पुरस्कार आपको दिए गए हैं। आप शिव शक्ति लीडरशिप अप्रोच की प्रेरणा हैं। तो मैं आपसे कहूंगी कि आज के इस विषय को आप अच्छे से हम सबके बीच रखें। डॉक्टर सुनीता दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति। एक बार फिर से दिल से मुस्कुराते हुए, हाँ जी, ओम शांति। परमात्म गुण और शक्तियों के माध्यम सम्मान्य मंच और सभा में उपस्थित आप सभी स्व और विश्व परिवर्तन के माध्यम मीडिया प्रोफेशनल्स, मीडिया एक ऐसा प्रोफेशन है जो कभी रुकता नहीं है। खबरें कितनी तेजी से बढ़ती जा रही हैं और उससे भी ज्यादा तेज डेडलाइंस बढ़ते जाते हैं, और ऐसी तेज दुनिया में हम अंदर से शक्तिशाली बनकर रहें, अंदर से स्थिर रहें, ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि आज बात सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज की नहीं है, लेकिन अंदर से ब्रेक न होने की है। मैं कुछ वास्तविक अनुभव आंतरिक शक्तियों के प्रयोग के आपके सामने साझा करना चाहूंगी। सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक शक्ति जो आज हम कहे बुद्ध पूर्णिमा भी है ना, तो हमने देखा है कि आध्यात्मिक आंतरिक शक्ति सबसे महत्वपूर्ण वो है डिटैचमेंट, न्यारापन, जो सर्व आंतरिक शक्तियों का द्वार है। एक बार एक क्राइम रिपोर्टर क्राइम स्टोरीज को रिपोर्ट कर रहा था और रोजाना उसका वही था क्राइम स्टोरीज रिपोर्ट करना। अंदर से उसने बहुत अपने आप को भारी महसूस करने लगा और उसको लगा कि वह कहीं ना कहीं इन स्टोरीज को अपने अंदर लिए जा रहा है। तो उसने क्या किया, एक छोटा सा अभ्यास किया, पूरे दिन के अंत में 2 मिनट शांत में रहना और एक संकल्प क्रिएट करना कि ये स्टोरीज अलग है, मैं अलग हूं। और धीरे धीरे उसके अंदर हल्कापन आता गया, वो फोकस्ड होता गया, उसके अंदर स्पष्टता आती गई। तो डिटैचमेंट कोई भागना नहीं है, लेकिन हमारे आंतरिक ऊर्जा की रक्षा करना है। दूसरी और एक महत्वपूर्ण आंतरिक शक्ति वो है पॉज लेना, पॉज करना और क्लैरिटी की शक्ति। एक बार एक सोशल मीडिया का युवक कुछ पब्लिश करने जा ही रहा था कि कुछ मिनट पहले ही उसको एक वायरल वीडियो मिला। बहुत सेंसेशनल वीडियो था, टीआरपी के लिए तो एकदम परफेक्ट था और उसके ऊपर दबाव भी था कि जल्दी से पोस्ट करो, क्योंकि आपको पता है ना आजकल ब्रेकिंग न्यूज की रेस क्या है, सबसे पहला कौन। लेकिन उसने क्या किया, 10 सेकेंड का पॉज लिया और उसने सोर्स को चेक किया, सत्यता, ये कितना सत्य है, 100% सत्य है, क्लैरिटी के लिए, और वेट किया। और तब उसे पता चला ये तो 100% फेक वीडियो है। उसके 10 सेकेंड के पॉज ने उसकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ा दिया। कोई भी बड़े निर्णय लेने के पहले अगर हम 10 सेकेंड पॉज कर लेते हैं तो क्या होगा, रिएक्शन तो बहुत तुरंत कर लेते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जागरूकता मांगती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसलिए वो 10 सेकेंड जो उसने पॉज किया उससे वो फर्स्ट नहीं आया, उसको फर्स्ट नहीं बनाया, लेकिन उसको ट्रस्टवर्दी जरूर बना दिया। और विश्वसनीयता, यही मीडिया की असली शक्ति है। तीसरी अहम आंतरिक शक्ति और वो है स्टेबिलिटी, स्थिरता। एक न्यूज एंकर को बहुत ट्रॉलिंग का सामना करना पड़ा, बहुत कंप्लेंट्स, क्रिटिसिज्म, बहुत सारे कमेंट्स, यहां तक कि पर्सनल अटैक्स भी, और कोई होता ना तो अंदर हर्ट महसूस करता, रिएक्शन करते हैं। लेकिन उसने क्या किया, उसने अपने आप से सवाल पूछा कि इससे भी मुझे क्या सीखने को मिलता है, और जो सही है उसको उसने अपनाया और जो उसको लगा व्यर्थ है छोड़ दिया, लेट गो कर दिया, माफ कर दिया। और दूसरे दिन उसने अपने आप को बहुत स्टेबल और पावरफुल महसूस किया। तो सवाल उठता है कि नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करना चाहिए या फिर ग्रोथ में ट्रांसफॉर्म कर देना चाहिए। चौथी बहुत मुख्य शक्ति भी कहो और गुण भी कहो, और वो है कंपैशन, करुणा में। एक एक्सीडेंट साइट पर एक पत्रकार कवर कर रहा था जहां पर पूरा परिवार शोक में बैठा हुआ था। उसके पास 2 विकल्प थे, या तो इमोशनल विजुअल्स दिखाऊं या फिर डिग्निटी। उसने डिग्निटी को चुना। सारे फैक्ट्स उसने बताए लेकिन संवेदनशीलता से बताए। तो यदि हम करुणा को ले आते हैं तो क्या होगा, क्योंकि आखिर हेडलाइंस के पीछे एक इंसान होता है, और इसलिए करुणा को अगर जोड़ दें हम तो प्रभाव कम नहीं होता, सम्मान और भी बढ़ता है। इसलिए प्रिय देवी बहनों और भाइयों, आप केवल मीडिया प्रोफेशनल्स नहीं हो, आप तो विचारों के निर्माता हो, समाज के प्रभावकर्ता हो, परिवर्तन के माध्यम हो। और अगर ये सारी आंतरिक शक्तियां, डिटैचमेंट, पॉज करना, शांत होना, क्लैरिटी रखना, स्टेबिलिटी और करुणा में अगर आपके अंदर आ जाए तो आपके शब्दों में शक्ति के साथ साथ पवित्रता भी आ जाएगी। और इन सभी आंतरिक शक्तियों का एकमात्र स्रोत है और वो है सर्वशक्तिवान परमपिता शिव परमात्मा, और उनसे जुड़ने का एक ही माध्यम, एक ही मीडिया है, और वो है राजयोग मेडिटेशन। तो क्यों नहीं आज हम इस शुभ दिन पर, इस शुभ अवसर पर, यहाँ पर इस शुभ आंगन में परमात्मा को साक्षी मानते हुए एक शुभ संकल्प कर ले, छोटा सा संकल्प ले ले कि दुनिया चाहे कितनी भी तेज क्यों न हो, लेकिन मैं अंदर से स्थिर रहूंगी अथवा रहूंगा। बहुत जरूरी है, क्योंकि आज दुनिया को और खबरें नहीं चाहिए। आज अगर दुनिया को चाहिए तो वो है कॉन्शियस मीडिया, और ये परिवर्तन मुझसे शुरू होना है। तो करें हम सभी ये दृढ़ संकल्प। तैयार है सभी? खड़े हो जाएंगे प्लीज सभी, और एक अपना हिम्मत का हाथ, कहते हैं हिम्मत से बच्चे तो मदद खुदा, तो अपना हिम्मत का हाथ अपने दिल पर रखिए। हम सभी खड़े होकर अपना हिम्मत का हाथ अपने दिल पर रखते हुए ये दृढ़ संकल्प करते हैं, छोटा सा संकल्प आप सभी दोहराएंगे कि दुनिया चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो जाए, मैं राजयोग के माध्यम से सर्वशक्तिवान शिव परमात्मा से अपना बुद्धि योग जोड़कर अंदर से स्थिर रहूंगी रहूंगा। थैंक यू। ओम शांति।
बहुत सुंदर, एक बार और जोरदार तालियां आप डॉक्टर सुनीता दीदी के लिए बजा सकते हैं। डॉक्टर सुनीता दीदी के लिए मैं कहना चाहूंगी कि दीदी आपका काम है सबको अज्ञान से जगा देना, शिव शक्ति बनकर दुनिया को नई दिशा देना। लीडरशिप आपके पद से नहीं, आपके मन से है, और नारी शक्ति को देवी शक्ति बना देना ये आपका प्रण है। आप साक्षात शक्ति अवतार हो, ब्रह्मा कुमारी इस परिवार का विशेष श्रृंगार हो, विशेष श्रृंगार हो। जिनके आपने अनुभवी विचार सुने आपको तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और अभी मैं बड़े आदर से, सम्मान से, बड़े प्रेम से हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय राजयोगी बीके डॉक्टर बनारसी लाल शाह भाई जी, उन्हें आमंत्रित करना चाहती हूँ। आपके बारे में आप सबको बताना चाहती हूँ कि आप राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के मेडिकल विंग के आप सचिव हैं। आप ब्रह्मा कुमारी संस्थान के हेल्थ केयर सेंटर और एवर हेल्दी हॉस्पिटल के निदेशक हैं। संस्था की कई गतिविधियों के पीछे आप मुख्य प्रेरक रहे हैं। पूरे भारत में आपने कई स्वास्थ्य जागरूकता अभियान आयोजित किए हैं। भारतवर्ष में ब्रह्मा कुमारी के जहां भी सेवा केंद्र हैं, आपके निर्देशन में जगह जगह स्वास्थ्य मेले, स्वास्थ्य शिविर समय प्रति समय आयोजित होते रहते हैं। आपने अनगिनत ऐसे स्वास्थ्य सम्मेलन, स्वस्थ दुनिया बनाने के लिए उद्देश्य से 250 से भी ऊपर, मुझे तो लगता है अब ये संख्या बहुत बढ़ गई होगी, ऐसे कई सारे आयोजन किए हैं, आपको कई पुरस्कार प्राप्त हैं, उनमें सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जागरूकता के उद्देश्य को बढ़ाने के लिए आपको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से भी, संस्था की तरफ से भी सम्मानित किया गया है। जोरदार तालियां आप सब भाई साहब के लिए बजाएंगे। और एक विशेष बात, आज जो बड़ी समस्या है, नशा, नशा हर घर की समस्या बन चुका है, तो आदरणीय भाई साहब ने मेरा भारत नशा मुक्त भारत और नशा मुक्त युवा विकसित भारत, ऐसे अभियान के तहत लाखों का नशा छुड़ाया है, नशा मुक्ति का संदेश दिया है। आपके मार्गदर्शन में पूरे भारत में राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान इस वर्ष चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों को, युवाओं को, कई संस्थाओं को और आम जनमानस को जोड़कर लगभग 10 करोड़ लोगों से प्रतिज्ञा कराने का आपने संकल्प लिया है। आज हम सब भाई साहब को सुनेंगे भी और उनके साथ कुछ शपथ भी लेंगे। जब भी मैं भाई साहब को देखती हूँ तो मुझे बस यही याद आता है कि आपकी तो हर अदा निराली है, क्योंकि आपने रहमत खुदा की पाली है। जहाँ पे रखते हैं कदम, रहा ना कोई खाली है। नशा मुक्त दुनिया बनाने की आपने कसम उठा ली है और उस कसम में हम सब भी आपके साथ हैं। तो बड़े जोश और उमंग के साथ हम भाई साहब को सुनेंगे। आदरणीय भाई साहब,
ओम शांति। परम आदरणीय डॉक्टर प्रताप भाई, आदरणीय शकु दीदी, सुनीता दीदी, हमारी भोपाल से आई हुई दीदी, और सभा में उपस्थित सरस्वती माँ को देखा है, लेकिन आज साक्षात्कार सरस्वती माँ के राइट हैंड्स को कहें या उनके लाल कहें, हमको देखने में आ रहा है। तो आपका भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, स्वागत करता हूं। विषय बड़ा गंभीर है, हमारे लिए नहीं, समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए। नशा मुक्त घर घर की प्रॉब्लम है। ये नशा की बातें हम आज से शुरू नहीं किए हैं, सरकार के साथ एमओयू किया है तब से शुरू नहीं किए हैं। परमात्मा इस धरा पर 1936 में आए भगवान, सुन लीजिए, भगवान इस धरा पर 1936 में अवतरित हुए और उन्होंने कहा, बच्चे तुम देवता थे, तुमको देवता बनना है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का लक्ष्य क्या है? देवता बनाना। तो बाबा ने कहा कि तुमको देवता बनना है। हिसाब नहीं लिया कि ये स्वर्ग था, तुमने कैसे नरक बना दिया, कुछ नहीं। बच्चे तुम उठो, जागो, देवता बनो, व्यसनों को त्यागो। कान में एक मंत्र और डाल दिया, बच्चे नेकी करो, दरिया में डालो। तो आज 15 लाख परिवार जुड़ा है ईश्वरीय विश्वविद्यालय से, लेकिन हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि हम कितने को नशा मुक्त किए हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग नशा मुक्त कर रहे हैं, संस्थाएं कर रही है, हमारे साधु संत महात्माएं कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट कितना मिलता है? 10%, 20%, 30%। ब्रह्मा कुमारी को 97% रिजल्ट मिलता है। केवल नशे के ऊपर नहीं, आप जो मेडिटेशन सीख रहे हैं, सीखने के लिए आए हैं, ये इतना यूनिक है कि बीमारियों पर भी बहुत अच्छा असर डाल रहा है। आज हार्ट की बीमारी महामारी की तरफ फैल रही है, हम ज्यादा इस पर डिटेल नहीं ये करेंगे, लेकिन उस पर भी रिसर्च करके देखा है, हार्ट की बीमारी जो एंजियोग्राफी करा करके पेशेंट आता है 99% 100% 85% चार चार आर्टरी ब्लॉक है, कैल्सिफिकेशन हो गया है, डॉक्टर बोलता है कि एंजियोप्लास्टिक नहीं कर सकते हैं, बाईपास भी मुश्किल से होगा, ऐसे पेशेंट को बुला करके डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन सिखाते हैं और उसको 7 दिन के बाद घर भेजते हैं, 6 महीना में उसकी आर्टरी क्लीन हो जाती है। 1 के ऊपर रिसर्च नहीं किया, 100 के ऊपर नहीं किया, 1000 के ऊपर नहीं किया, 12,000 लोगों को आर्टरी क्लीन किया हुआ है। मेडिटेशन इतना यूनिक है। अब हम आते हैं अपने सब्जेक्ट पर। जब ये सरकार को पता लगा कि इनको 97% रिजल्ट मिलता है, तो भारत सरकार सोशल जस्टिस वेलफेयर डिपार्टमेंट से चीफ सेक्रेटरी ने दादी जी को लेटर लिखा, दादी जी आप भारत को नशा मुक्त बना रहे हैं, भारत सरकार भी भारत को नशा मुक्त बनाने की सेवा कर रही है, हम क्यों ना दोनों मिलकर के MOU साइन करें, दोनों मिलकर सेवा करें। दादी जी ने लेटर पढ़ करके खुशी से ये किया कि सरकार के साथ हम मिलकर के सेवा करना चाहते हैं। 4 मार्च 2023 को अम्बेडकर भवन में दिल्ली में ये MOU हुआ। MOU के टाइम में कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कुमार जी थे, स्टेट मंत्री रामदास अठावले थे, उनके चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, डायरेक्टर सारे लोग थे। MOU हुआ और तब उन्होंने कहा कि 3-3 मास का रिपोर्ट दीजिए। हम 3 मास का रिपोर्ट दिया तो उन्होंने कहा कि 3 मास में आपने पूरे भारत का रिपोर्ट दे दिया। हमने कहा कि सर आप तो भारत का ही रिपोर्ट मांगे हैं, आप कहें तो हम सारे वर्ल्ड का, 145 कंट्री में ब्रह्मा कुमारी का आश्रम है, हम 145 कंट्री का दे सकते हैं। ये बातें सुन करके हमारे नारकोटिक डिपार्टमेंट NCB, उन्होंने कहा, उनके डायरेक्टर जनरल अश्वनी गर्ग साहब ने, उनका फोन आया कि बनारसी भाई हम भी आपके साथ MOU करना चाहते हैं। गणतंत्र भवन में दिल्ली में उनका हेडक्वार्टर है, वहां MOU हुआ और आज तक 4 करोड़ लोगों तक हम पहुंचे हैं, 4 करोड़ लोगों तक। ये भारत युवाओं का देश है, 65% युवा होते हैं, आप सबको पता है। जो युवा व्यसन में चले गए हैं छोड़ दीजिए, उनको बचाना है, उनकी बात बाद में करेंगे, लेकिन जो बचे हुए युवा हैं वो रोज के 5,500 युवा व्यसन में जा रहे हैं। आप सोचिए वो युवा कौन है, आपके हमारे बच्चे हैं, क्या बचाना नहीं है? हमारे प्राइम मिनिस्टर स्वप्न देख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, प्रयास कर रहे हैं, और सारे युवा व्यसन में चले जाएंगे तो विश्व गुरु कौन बनेगा, सोचने की बात है। तो ये चीजें जब हम उनके साथ MOU किया तो हमने 36 रथ बनाया जिसमें कुंभकर्ण को लेटाया। अब आप कहेंगे कि नशा और कुंभकर्ण के क्या ताल्लुक है भाई? नशा ऐसी ड्राई चीज है कि लोग नशेड़ी, नशा करने वाले के पास हम जाकर के नशा की बातें करें कि भाई छोड़ना है तो उठ के वो चला जाता है, कहता कि यही तो ये मेरा धरोहर है, वो भी आप लेने के लिए आए हो, हम आपसे बात नहीं करेंगे। ऐसे लोग ऐसे हैं, अब उनके लिए क्या करें? ऐसे रथ बनाया है, वो रथ गांव गांव में, स्कूल में, शहर में, सब जगह जाता है। गांव में जाता है वो, जब हम उसको लाइव बनाया है, ऑन करते हैं तो कुंभकर्ण उठ के बैठता है, इधर उधर देखता है और बोलता है मुझे क्यों जगाया, तो बहने माइक लेकर के खड़ी होती है और वो कहती है कि भाई ये सोने का वक्त नहीं है, जागो, परमात्मा को याद करो, व्यसनों को छोड़ो। फिर कुंभकर्ण बोलता है कि क्या भगवान को याद करने से, परमात्मा को याद करने से, मेडिटेशन करने से ये व्यसन जाएगा? तो बहने बोलते थे व्यसन तो छोटी सी चीज है, बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती है। लोग सुनते हैं, माइक पर बात हो रही है, वो लोग कहते हैं दीदी हम व्यसन लेते हैं, छोड़ना चाहते हैं। वो दीदी बोलती है कि आ जाइए आश्रम पर, और वहां 10-15-50 का कोर्स रोज से शुरू हो जाता है और लोग व्यसन मुक्त हो जाते हैं। हम आपको एग्जाम्पल देंगे, समय की अभाव है, नहीं तो बहुत कुछ कहना चाहते थे। एक एग्जाम्पल है, एक व्यक्ति जो बुचड़ का काम करता था, 40 साल से व्यसनों में डूबा हुआ था, और एक दिन उसको पता नहीं क्या मन में आया, ब्रह्मकुमारी आश्रम में चला गया। बहनों ने बहुत प्यार से उनको रेस्पेक्ट से रिसीव किया, उनको संस्था के बारे में परिचय दिया, बोला कि 7 दिन का भाई कोर्स होता है। वो बोला कि 7 दिन में आऊंगा। 7 दिन का कोर्स किया, व्यसन छोड़ दिया सारा, कोई विड्रॉल सिम्टम्स नहीं हुआ। और दूसरा, उसका बुद्धि ठिकाने आ गया। वो कहा कि अरे तो हम बुचड़ का काम थे तो पाप का काम है, वो भी छोड़ दिया। ऑटो रिक्शा कर परिवार को चलाना है, बच्चों को खाना देना है, ऑटो रिक्शा खरीदा, ऑटो रिक्शा चलाता है, परिवार की संभाल करता है। ऐसे ऐसे परिवर्तन हुआ है। एक और आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक व्यक्ति जिंदल कंपनी का जब अपॉइंटमेंट हुआ तो मैनेजर था, जाति के राजपूत, और वो राजपूत में बचपन से ही व्यसन शराब पिलाते हैं, हर फंक्शन में उनके यहां शराब चलता है। और वो व्यक्ति जब सिलेक्शन हुआ, वो डायरेक्टर ये बना, तो कंपनी तो बाद में जब पता लगा कि शराबी है तो दुखी हुआ, लेकिन निकाल नहीं सकता। वो व्यक्ति देवी का भगत, राजपूत देवी के भगत होते हैं, नवरात्रि में देवी का फोटो लगा करके अंगूठा को चाकू से काट करके ब्लड निकाल करके देवी को तिलक दे करके, और शराब बावेल से पीता था, कटोरे से पीता था, बोतल से नहीं, और 10 दिन देवी के सामने बैठा रहता था, बाहर नहीं जाता था। ऐसे व्यक्ति ब्रह्मा कुमारी आश्रम में गया और सब कुछ छोड़ दिया, और वो अपने कंपनी को इतना प्रॉफिट दिया कि कंपनी उसको रिटायरमेंट किया तो बोला कि नहीं, 2 साल और तुमको हम बढ़ा देते हैं, तुम 2 साल और काम करो, जनरल मैनेजर के रूप में अभी भी काम कर रहा है। ऐसे ऐसे रिपोर्ट है। हमारी एक रथ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाती है, स्कूल में गई, एक हाई स्कूल में, गवर्नमेंट हाई स्कूल में, वहां गवर्नमेंट हाई स्कूल में गरीब के बच्चे जाते हैं, अमीर के बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं। वहां गांव के बच्चे भोले भाले गरीब परिवार के वहां गए पढ़ने के लिए, दोस्तों के पीयर प्रेशर में व्यसन सीख लिया। अब उनको तलब होता है, गरीब माँ बाप मुश्किल से कपड़ा देता है, किताब देता है, स्कूल का फी देता है, खाना देता है, 4 के अलावा उसके पास पैसा नहीं होता है, धन नहीं होता है, गरीब कहां से लाएगा। अब व्यसन सीख लिया, तलब होता है, कष्ट होती है, तो ये कब तक सहन करेंगे। इन बच्चों ने ग्रुप बना लिया, 25 का ग्रुप बना करके, और बोला कि कब तक ये दुख उठाते रहेंगे, चलो सुसाइड करने। वो सुसाइड करने के लिए तालाब ढूंढ रहे थे, पेड़ ढूंढ रहे थे, नदी ढूंढ रहे थे, और ये सुसाइड करें। हमारी ये गाड़ी गई और बहनों ने 1 घंटा, उनको प्रिंसिपल ने सब बच्चों को बैठा दिया मैदान में, 1 घंटा बहनों ने लेक्चर दिया, उस 25 बच्चों का बुद्धि बदल गया। अरे हम सुसाइड करने जा रहे हैं, ये दीदी ने इतना अच्छा लेक्चर दिया कि हमारा मन बदल गया, हम सुसाइड छोड़ करके हम नशा छोड़ सकते हैं ना। प्रिंसिपल के पास सीधे चले गए, सर आपने मेरी जान बचा दिया। प्रिंसिपल कहा कि मैं तो सरकारी काम मेरे पास इतना है कि मैं तो काम कर रहा हूं, तुम्हारा लेक्चर सुनने भी नहीं गया, इतना मेरे पास टाइम नहीं मिला, हमने तुम्हारी जान कैसे बचाई। अरे तो नहीं सर, हम आपके स्कूल के छात्र हैं, 1000 बच्चों को बाई फेस पहचानना आपके लिए मुश्किल है, मैं समझता हूं, हम लोग यहां आकर के व्यसन सीख लिया दोस्तों के पीयर प्रेशर में, अब तलब होता है, हमारे माँ बाप पैसा नहीं देते हैं, हम व्यसन कहां से खरीदें, हम सुसाइड करने जा रहे थे, लेकिन इन दीदियों के लेक्चर सुन करके मेरा मन बदल गया, आपको प्रॉमिस करते हैं हम व्यसन छोड़ देंगे हम सब बच्चे, लेकिन एक लेक्चर से नहीं होगा। फिर प्रिंसिपल तो डर गया कि भाई 25 बच्चे सुसाइड करेंगे तो मेरा क्या हाल होगा। फिर उसने कहा कि नेक्स्ट, तो सर इनको रोज बुलाइए और हम प्रॉमिस करते हैं व्यसन छोड़ देंगे। 6 मास हो गया, वहां हमारी बहनें रोज जाती है, 1 घंटा रोज प्रेयर के बाद वो लेक्चर होता है, वो बच्चों का रिजल्ट अच्छा हो गया, सब व्यसन मुक्त हो गए और सब अच्छे हो गए। इस तरह की सेवाएं हमारी चल रही है। तो अब जब ये सारी बातें सरकार को जब पता लगा, अभी चिंतन शिविर चल रहा था दो दिन पहले हमारे चंडीगढ़ में, 5 स्टार ललित होटल, कोई उधर के होंगे तो जानते होंगे, ललित होटल में चिंतन शिविर, पूरे भारत के जितने सोशल जस्टिस वेलफेयर मिनिस्टर थे सब पहुंचे थे, उनके सेक्रेटरी, उनके डायरेक्टर, उनके सब पहुंचे थे। और उसमें प्राइवेट अगर किसी को बुलाया तो किसको बुलाया, ब्रह्मा कुमारी को बुलाया, और उन्होंने मेमोरेंडम किसका स्वीकार किया, हमारा। आज संसार के लिए, समाज के लिए व्यसन छुड़ाना बहुत कठिन हो गया है, यहां तक कि लोग हिम्मत हार रहे हैं। बड़े बड़े साइकेट्रिक, बड़े बड़े फिजिशियन रिहैबिलिटेशन सेंटर में, वो सरकार ने ये किया है, लेकिन लोग छोड़ते हैं। हमारे डॉक्टर मेहनत करते हैं, फिर पी करके फिर वहीं आ जाते हैं, रिजल्ट नहीं। ब्रह्मा कुमारी में एक बार लोग छोड़ देते हैं तो जीवन भर के लिए छोड़ देते हैं। इसका इतना अच्छा मेडिटेशन का प्रभाव है जीवन बदलने के लिए, समाज बदलने के लिए। समय की अभाव है, मैं यहीं विराम करूंगा और आप लोगों से चाहूंगा जिनको भी जरूरत है वो आप ब्रह्मा कुमारी आश्रम में लाइए, मैं विश्वास दिलाता हूं वो छोड़ देंगे। ओम शांति, थैंक यू, शुक्रिया। सॉरी, हम घड़ी को भी दीदी ने 2 मिनट दिया है हम प्लेज लेने के लिए, तो आप लोगों को हम कष्ट देंगे, थोड़ा सा खड़ा हो जाएं। क्यों प्लेज दे रहे हैं, क्यों दिला रहे हैं, क्योंकि आपके मुख से निकलेगा तो हमारा शास्त्र साक्षी है कि ब्रह्मा जी ने संकल्प से सृष्टि रचा, ते ब्रह्मा बस्त मास्टर ब्रह्मा, ये संकल्प करेंगे, ये मीडिया वर्ग संकल्प करेगा, हमारा भारत व्यसन मुक्त होगा। तो सामने अपना राइट हैंड सामने रखें और संकल्प करें, मैं परमपिता परमात्मा निराकार शिव बाबा के सामने वचन देता हूं कि कभी भी किसी के प्रेशर में आ करके व्यसन नहीं लेंगे। और कोई व्यसनी है तो उसको ब्रह्मा कुमारी आश्रम लाएंगे और मेडिटेशन सिखाएंगे और व्यसनों से मुक्त करेंगे। मेरा भारत व्यसन मुक्त भारत, मेरा शहर व्यसन मुक्त शहर, मेरा पड़ोस व्यसन मुक्त पड़ोस, मेरा घर व्यसन मुक्त घर। ओम शांति, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई सबको, आदरणीय डॉक्टर बनारसी भाई जी को। कैसा लगा आप सबको? नशा मुक्त भारत बनाना चाहते हैं? चाहते हैं तो सहयोग देंगे भाई सब, सभी सहयोग देने को तैयार हैं। आप सब अपने लिए भी एक बार तालियां बजाइए, थैंक यू। और अभी वो घड़ी आ रही है कि इस नुमा शाम के समय हम परमात्मा अनुभूति करें। आप सब कल से इस सुंदर परिसर में हैं, परमात्मा की बातें सुन रहे हैं। आज सवेरे का सत्र भी आपने अटेंड किया होगा, आत्मा का परिचय आप सबको मिला और कल सवेरे आपको परमात्मा का परिचय दिया जाएगा। एक छोटी सी बात मैं दीदी को बुलाने से पहले आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक राजा हुआ करते थे, वैसे भी हमारी भारत भूमि राजा महाराजाओं की भूमि रही है। एक राजा थे और उनके मन में 3 प्रश्न थे। कितने प्रश्न थे? 3 प्रश्न थे। पहला प्रश्न था कि परमात्मा कैसे मिलता है, क्या प्रश्न था? दूसरा प्रश्न था परमात्मा कैसे कार्य करता है, परमात्मा करता क्या है? तीसरा प्रश्न था परमात्मा की शक्तियां क्या होती हैं, परमात्मा की पावर क्या है? राजा थे, कई जगह पूछते थे, कई विद्वानों को बुला के पूछा, लेकिन संतुष्टता वाला आंसर नहीं मिला। कई जगह खोजा, तीनों प्रश्नों का ऐसा आंसर नहीं मिला कि मन को एक संतुष्टि हो। उसी राज्य में उन्हीं राजा के एक मंत्री थे। उनका एक नन्हा सा अबोध सा बालक था, छोटा सा बालक। उसने भी सुना था अपने पिताजी से कि राजा साहब के ये तीन प्रश्न हैं। उस अबोध से बच्चे ने अपने पिता से कहा, क्या मैं राजा साहब के प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूँ? तो उनके पिता को बड़ी हैरानी हुई कि ये इतना छोटा बच्चा राजा के इतने बड़े प्रश्न का उत्तर कैसे देगा। पर उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी आप मुझे एक बार तो ले चलो राजा साहब के पास। दूसरे दिन वो मंत्री जी राजमहल में अपने बेटे को लेकर पहुंचे। बच्चे ने राजा से कहा, महाराज मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूँ, बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा। तो राजा को सुन के पहले तो आश्चर्य भी हुआ, मुस्कुराए भी और कहा, तुम इतने छोटे से बच्चे, तुम कैसे मेरे इतने बड़े प्रश्नों का उत्तर दोगे? कहा, मैं देने को तैयार हूँ। तो राजा ने कहा, चलो पहले प्रश्न का उत्तर दो। क्या था पहला प्रश्न? क्या था? कि परमात्मा मिलते कैसे हैं? ठीक है, भूलेंगे तो नहीं? तो कहा, ठीक है मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर देता हूँ, लेकिन एक बात बताइए, आपके राजमहल में कोई मेहमान आए तो आप उसका आदर सत्कार नहीं करेंगे? कहा, करूंगा। तो कहा, मेरा भी पहले आदर सत्कार करिए। तो राजा ने कहा, क्या करूं? कहा, एक सोने का ग्लास मंगाइए, उसमें दूध भरा हो वो मंगवाइए, उससे मेरा स्वागत करिए। राजा के लिए कोई बड़ी बात नहीं, सोने के ग्लास में दूध आ गया। राजा को लगा कि ये दूध पीकर मेरे प्रश्न का उत्तर देगा। बच्चे ने ग्लास हाथ में लिया और उस दूध को अपनी उंगली से हिलाने लगा, दूध को अंदर ही अंदर मिला रहा है। मिलाते मिलाते लगभग 15 से 20 मिनट हो गए। राजा ने कहा, क्या कर रहे हो? कहा, दूध को हिला रहा हूँ, मक्खन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। राजा ने कहा, बच्चे तुमको पता नहीं है मक्खन ऐसे नहीं निकलता है? तो कहा, कैसे निकलता है? कहा, दूध को पहले जमाना होता है, बिलोया जाता है, दही बनाया जाता है, छाछ बनाई जाती है, फिर उससे कई बार मेहनत के बाद मक्खन निकलता है। तो कहा, यही आपके पहले प्रश्न का उत्तर है। परमात्मा ऐसे नहीं मिल जाता है, परमात्मा के सत्य स्वरूप को पहचानना पड़ता है, जानना पड़ता है, समय देना पड़ता है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना पड़ता है, उनकी परम ज्योति से अपनी ज्योति को जोड़ना पड़ता है, तब जाके परमात्मा मिलते हैं। ठीक आंसर दिया, आप सब संतुष्ट हैं? उस बच्चे के लिए ताली बजाइए। दूसरी प्रश्न का उत्तर राजा ने कहा, मुझे राजा को लगा मैं संतुष्ट हो गया, अब राजा खुश हुए। उन्होंने कहा, बेटा दूसरे प्रश्न का उत्तर दो कि परमात्मा करता क्या है। कहा, ठीक है आप चलिए मेरे साथ, सिंहासन से उतरिए। वो उनको एक कमरे में ले गया, उस कमरे में अंधेरा था। कहा, महाराज बताइए इस कमरे में प्रकाश चाहिए तो क्या करना होगा? तो कहा, एक दीपक जलाना होगा, दीपक जलाएंगे तो अंधेरा मिट जाएगा। महाराज ने दीपक जलाया, कमरे में उजाला हो गया। कहा, परमात्मा का भी यही कार्य है, परमात्मा हमारे जीवन के अज्ञानता को दूर कर हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश लाते, और उस ज्ञान से हमारा जीवन सहज और सरल हो जाता है। परमात्मा का कार्य ये है, अज्ञानता का विनाश, ज्ञान सूर्य प्रगटा तो अज्ञान अंधेर विनाश, ये परमात्मा का कार्य है। ठीक है, संतुष्ट है? तीसरी बात है, परमात्मा की शक्ति क्या है? तो बच्चे ने कहा, चलिए अब इस कमरे से बाहर वापस चलते हैं। उसी दरबार में आ गए, राजा अपनी सीट पर सिंहासन पर बैठ गए, बच्चा नीचे खड़ा है, राजा ने कहा, बेटा तीसरे प्रश्न का उत्तर दो कि परमात्मा की शक्ति क्या है। तो कहा, महाराज एक बात बताइए, आप राजा बन के पूछ रहे हैं या मेरा शिष्य बन के पूछ रहे हैं? तो राजा ने कहा, इस समय तो मैं आपका शिष्य हूँ। तो कहा, शिष्य हैं तो सिंहासन पे बैठेंगे और मैं नीचे खड़ा हूँ। तो राजा ने कहा, मैं नीचे आ जाता हूँ। राजा नीचे आके खड़े हो गए सिंहासन से उतर के, और बच्चा दौड़ के फट से जाके राजा के सिंहासन पे बैठ गया। और तीसरे प्रश्न का उत्तर राजा ने कहा, अब दो सिंहासन पे बैठ के ही दे दो। तो कहा, अभी भी प्रश्न करने की जरूरत है क्या महाराज? परमात्मा की शक्ति है, वो चाहे तो राजा को रंक बना दे और चाहे तो रंक को राजा बना दे, ये परमात्मा की शक्ति है। तो तीनों प्रश्नों के उत्तर महाराज को मिल गए, आप सबको भी मिल गए होंगे। और परमात्मा वास्तव में प्रेम दया करुणा सर्व शक्तियों का भंडारी है, सर्वशक्तिवान है। और आज उस सर्वशक्तिवान से हम सबकी ज्योति को उस महाज्योति से मिलाने के लिए राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सक्कु दीदी जी उपस्थित हैं। आप बड़ी देर से देख रहे हैं, दीदी बड़ी निर्मल सरल और परमात्मा की बहुत सुंदर कृति हैं, जिनके नयनों में शांति, वचनों में मधुरता और जिनके सानिध्य से मिलती है आत्मा को पवित्रता। तो ऐसी मंगल मूर्ति हमारे बीच विराजित हैं। आप बाल्य अवस्था से ही 58 वर्षों से 58 ईयर्स से सेवाएं दे रहे हैं। आप वर्तमान में घाटकोपर सब जोन की निदेशिका हैं। आपके द्वारा तत्व बोध नामक प्रेरणादायी कहानियों के लगभग 650 से ज्यादा वीडियोस यूट्यूब पर पब्लिश हो चुके हैं। आपको वुमन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड भी प्राप्त है, इसके लिए आप दीदी को तालियों से सम्मान दे सकते हैं। आप राजयोग एवं मूल्य आधारित कोर्सेज के द्वारा भारत और विदेशों के कई स्थानों पर अपनी विशेष सेवाएं भी लगातार दे रहे हैं। तो मैं दीदी से अनुरोध करती हूँ कि आप अपनी मधुरवाणी और शक्तिशाली संकल्पों के माध्यम से हमें मेडिटेशन का गहन अनुभव कराएं, हम सबको अपने भीतर झांकने का एक अवसर दें। क्योंकि बाहर ढूंढने वालों, अपने भीतर तो देखो, सुकून और शांति का समंदर तो आपके खुद ही पास है। परमात्मा के संग का अनुभव जो कर ले, वही तो दुनिया में सबसे खास है, दुनिया में सबसे खास है। तो ऐसी मंगल अनुभूति कराने के लिए दीदी हमारे बीच उपस्थित है।
ओम शांति। मंच पर विराजमान माननीय वक्ता, सभा में उपस्थित आए हुए मेहमान भाई बहने, सर्वप्रथम तो मैं ये बात आपको कहना चाहूंगी कि ऐसी श्रेष्ठ पावन पवित्र वरदानी भूमि में जो आप मीडिया कॉन्फ्रेंस के निमित्त पहुंचे हैं, अपना समय निकालकर, निस्संदेह आप सभी विशेष सौभाग्यशाली आत्माएं हैं। अभी हम बहुत अच्छे अच्छे विचार कल से लेकर के वैसे तो सुन ही रहे हैं अनुभवी वक्ताओं से, और आज जो हमारा ये विशेष विषय बना हुआ है, चुनौतियों का सामना हम भीतर की शक्तियों के आधार पर करें, क्योंकि समय बहुत तेजी से दौड़ रहा है। हर क्षेत्र में हर एक व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, सफल होना चाहता है, दौड़ रहा है, लेकिन इस यात्रा में हर एक व्यक्ति को कई प्रकार की चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ता है। कभी प्रतिस्पर्धाएं होती, कभी संबंध में मन मुटाव होते हैं, उतराव चढ़ाव होते हैं, खटास होती है। तो उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें भीतर के शक्तियों की आवश्यकता है। अगर हम केवल बाहरी साधनों से उनका सामना करते हैं तो हम विजयी नहीं बन सकते, संभव नहीं होता। तो भीतर की शक्तियों को हम कैसे जागृत करें? वैसे तो कभी कभी ये अनुभव भी सबके पास होगा कि अगर कोई समस्या आई हुई है और हम बड़े शांत मन से, पेशेंस रख कर, सकारात्मक सोच से उसका निवारण करते हैं तो उसमें सफल भी जा सकते हैं और जाते भी हैं। इसीलिए इन भीतर की शक्तियों को जागृत करना बहुत आवश्यक है। हमारे सामने जो परिस्थितियां आती है उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के शक्तियों की आवश्यकता रहती है, कभी सहन शक्ति, कभी समाने की शक्ति, कभी निर्णय शक्ति, कभी सकारात्मक सोच की शक्ति। अब इन शक्तियों की वर्तमान समय बहुत कमी नजर आ रही है, इसीलिए एक मिसाल बताते हैं कि एक बार एक कंपनी में दो कर्मचारियों को एक जैसी चुनौती आ गई जिसमें उनका कार्य जो है वो बहुत बढ़ गया। तो पहला कर्मचारी जो था वो सोचने लगा कि मेरे से तो ये नहीं हो सकता है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। ये सोच जो है उसकी कार्यक्षमता को कम कर देता है। लेकिन दूसरा कर्मचारी सोचता है कि हाँ कार्य तो कठिन जरूर है, लेकिन धीरे धीरे मैं करने की कोशिश करता हूँ, एक एक करके करता हूँ, और सचमुच वो पेशेंस रख के करता है तो वो सफल हो जाता है। तो इस कारण से हमें भीतर के शक्तियों को तो जागृत करना है। अब वो कैसे करें, क्योंकि भीतर माना हमारे अंदर शरीर में आत्मा विराजमान है, वो तो आप जानते हैं, और निस्संदेह ये शक्तियाँ केवल परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान से मिल सकती है, जो शक्तियों के भंडार हैं, गुणों के भंडार हैं। जब हम आत्माएं अपने मन बुद्धि को परमपिता परमात्मा से जोड़ती हैं, तो ऑटोमेटिकली आत्मा में वो शक्तियाँ आती जाती हैं। जैसे अभी लाइट चालू है, स्विच को ऑन किया, लाइट हो गई, क्योंकि इसका पावर हाउस के साथ बराबर कनेक्शन है। तो परमपिता परमात्मा कल्याणकारी, जिनको हम शिव पिता शिव बाबा कहते हैं, अगर हम उनको याद करते हैं सही रीति से, मन को क्लियर करके, लाइन को क्लियर करके, तो अनुभव कहता है कि हम बहुत सारी शक्तियां ऐसी प्राप्त करते जो हर चुनौतियों का सामना हम सहज कर सकते हैं। दो तीन क्षणों के लिए, मिनटों के लिए हम चलेंगे उस परम पिता परमात्मा के पास, जो शक्तियां हमें प्रदान करेंगे। मैं चाहूंगी कि सब थोड़ा सीधे होकर के बैठेंगे, रिलैक्स होकर के बैठेंगे, गहरी सांस को लेने की कोशिश करेंगे और फिर सांस को छोड़ेंगे। अभी हम भीतर की ओर अपना ध्यान देंगे। हम ये जान चुके हैं कि ये शरीर पांच तत्वों का बना हुआ नाशवंत है, और इस शरीर को चलाने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, प्रकाश हूँ, ज्योति हूँ, मस्तक के बीच चमकती हुई बिंदी हूँ। मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, जो पिता परमात्मा सुख शांति आनंद प्रेम के सागर हैं, भंडार हैं, और मैं आत्मा उनकी संतान सुख शांति आनंद प्रेम स्वरूप हूँ। मुझ आत्मा का स्वरूप शांत है, मुझ आत्मा का स्वधर्म शांत है, मुझ आत्मा का स्वदेश शांति धाम है, और मुझ आत्मा का पिता शांति का सागर है। यहाँ पर मैं एक एक्टर के रूप में शरीर के द्वारा पार्ट प्ले करने आई हूँ। तो जीवन के अंदर जो भी चुनौतियाँ हैं उनको मैं पिता परमात्मा के शक्ति द्वारा संभवित करके विजयी बनूंगी। एक दिव्य प्रकाश को अपने सामने अनुभव करें। सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा, मुझ आत्मा में बहुत बहुत शक्तियां भर रहे हैं और मैं उस पिता को साथ लेकर हर चुनौतियों का सामना करने को तैयार हूँ। समस्याएं कितनी भी कठिन हो, आत्मा का दीपक जलता रहे, अंधकार अपने आप मिट जाएगा, रास्ता मेरा साफ हो जाएगा। मुझे अनुभव हो रहा है कि परमात्मा मुझे शक्तियां प्रदान कर रहे हैं। अब हर चुनौती छोटी हो रही है और उनके आगे मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान का अनुभव कर रही हूँ। ऐसे हमें प्रतिदिन बीच बीच में अभ्यास करना है। निसंदेह आप अनुभव करेंगे आप में शक्तियां और गुण सेव होते जाएंगे, भरते जाएंगे, जीवन बदल जाएगा, दृष्टिकोण बदल जाएगा, जीवन सार्थक हो जाएगा। ओम शांति। एक लाइन में कहूंगी, हम गीत की सुनेंगे, सिर्फ एक लाइन।
ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ते खुदा ने तुझे गढ़ा है।
ओम शांति।
ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो मेरा, थोड़ा बोलेंगे, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। थैंक यू। और दिल से शुक्रिया दीदी, आपने परमात्मा के साथ की गहन अनुभूति कराई। थैंक यू। और अब वो शुभ घड़ी आई है कि हम अपने इस सेशन के चेयरपर्सन आदरणीय सम्माननीय राजयोगी भ्राता डॉक्टर प्रताप मिड्डा जी को सुनेंगे। आदरणीय डॉक्टर साहब का व्यक्तित्व ही सेवा और समर्पण की मिसाल है। आपने अपना संपूर्ण जीवन मानव मात्र के तन और मन के सुस्वास्थ्य के लिए समर्पित कर दिया है। आपका हमेशा अथक प्रयास रहता है कि हर आत्मा तन और मन से छोटी या बड़ी बीमारियों से, जटिलताओं से मुक्त रहे, सभी श्रेष्ठ सात्विक और सकारात्मक जीवन जिए। आप हमेशा ऐसी प्रेरणा सर्वात्माओं को देते रहते हैं। आप ब्रह्मा कुमारी संस्थान के विशेष महारथी कहें, महात्यागी कहें, महारतन कहें, ऐसी व्यक्तित्व के धनी हैं। आप बड़े ही रहम दिल, उदार चित और करुणा के सागर हैं। जब भी मैं भाई साहब को देखती हूँ, डॉक्टर साहब को देखती हूँ, तो मेरे मन में यही आता है कि उगते सूरज की किरणों सा पावन है आपका जीवन, उगते सूरज की किरणों सा पावन है आपका जीवन। तन मन को स्वस्थ रखते हम सबके लिए तो प्रभु का वरदान है आपका जीवन, प्रभु का वरदान है आपका जीवन। आप ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अतिरिक्त महासचिव के पद पर आसीन हैं। आप हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर और ट्रस्टी हैं। आप राधा मोहन मेहरोत्रा ग्लोबल हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर, पीसी परमार ग्लोबल हॉस्पिटल आई केयर सेंटर और जीवी मोदी रूरल केयर हेल्थ केयर सेंटर, शिवमणि होम और सरोज लाल जी जो हमारा नर्सिंग कॉलेज है, आप उन सभी के डायरेक्टर और ट्रस्टी हैं। तो मैं बड़े आदर भाव से आपको आमंत्रित करती हूं कि आप आज के अपने अध्यक्षीय भाषण कहें, वक्तव्य कहें या प्रेरणादायी उद्बोधन कहें, हम सबके बीच रखें। डॉक्टर प्रताप मिड्डा जी, जोरदार तालियों से हम भाई साहब को बड़ी ऊर्जा के साथ सुनेंगे।
ओम शांति। आदरणीय रीना बहन ने बहुत कुछ कह दिया। जब इतना कुछ सुनने को मिलता है तो सबसे पहले तो अपनी जिम्मेवारी सामने आती है कि जो बहन जी की शुभ भावनाएं उन तक हमें पहुंचना है। आदरणीय सुनीता बहन ने, डॉक्टर बनारसी भाई ने, शकू बहन ने बहुत कुछ हमें सुनाया। सबसे बड़ी बात जीवन में यह है कि आज जो समय चल रहा है वो इतना तेजी से परिवर्तन हो रहा है, और वैसे भी पत्रकारों के जीवन में जो डेडलाइंस, जो कमिटमेंट्स होती हैं, जो प्रेशर्स होते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी चीज है जो बहन जी ने कहा, वो है आत्मचिंतन। कभी कभी हम सबकी सेवा करते हैं लेकिन अपनी संभाल करना भूल जाते हैं। जो प्रोफेशनल चैलेंजेस हैं, जो मुश्किलें हैं, वो मुश्किलें कोई बड़ी नहीं है, लेकिन अगर हम अपने आप को सशक्त करें, सेल्फ एम्पावरमेंट पे ध्यान दें, तो बड़े से बड़ा काम भी इजी हो जाता है। क्योंकि देखिए, एथिकल डायलेमास भी होते हैं, फिर जहां भी हम काम करते हैं वहां लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, फिर परिवार की जिम्मेवारियां होती हैं, फिर कुछ न कुछ अपनी भी डिफिकल्टीज आ जाती हैं। उन सब के बीच में ये पत्रकारिता जो है बहुत डिमांडिंग प्रोफेशन है, मैं ये समझता हूं, क्योंकि मैंने बचपन से देखा है। और ये पत्रकारिता में लोगों को ये जरूर होता है कि आपको वो बात कहनी है जो लोगों के लिए असहज भी हो सकती है, जो लोगों के लिए मुश्किल भी पैदा कर सकती है। क्योंकि मैंने हॉस्पिटल्स में काम किया है, पेशेंट्स को देखा है, वहां कितनी मुश्किलें आती हैं और हॉस्पिटल्स को भी पत्रकार कवर करते हैं। तो मेरा कहने का भाव ये कि यहां हमें जो सुनीता बहन जी ने कहा कि हमें थोड़ा पॉज लेने की है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम चाहते क्या है। हम सबके जीवन में यही लक्ष्य होता है कि हम प्रसन्न रहें, हमारा परिवार प्रसन्न रहे, हम जीवन में आगे बढ़े, और सबसे बड़ी बात है कि हम संतुष्ट रहें, कंटेंटमेंट जीवन में हो, फुलफिलमेंट हो, भरपूरता का अनुभव हो। लेकिन भरपूरता का अनुभव कब होता है? जब हम कोई काम करते हैं जहां हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता। आपने किसी स्ट्रेंजर को मदद की, आपकी रिपोर्टिंग से किसी ऐसे व्यक्ति को ऐसी चेतना मिल गई, उसको जीवन का दर्शन मिल गया, तो तब कितनी भरपूरता का महसूसता होती है। इसको हम फुलफिलमेंट कहते हैं। एक पर्पस लाइफ में चाहिए। आज जैसे बहन जी कह रहे थे बुद्ध पूर्णिमा है, तो मैं कभी कभी बचपन में सोचता था कि महात्मा बुद्ध ने इतनी तपस्या की, इतनी फास्टिंग की, लेकिन जब वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठे जो बाद में बोधि वृक्ष बना और उनको एनलाइटनमेंट हुई। तो एक पल का ही होता है। एनलाइटनमेंट क्या है? एक सेकंड की बात है। जैसे कहते हैं संकल्प में सिद्धि है। जब आप रियलाइज करते हैं कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। यहाँ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में सबसे जो बड़ी और मुख्य पहली बात है वो है आत्मदर्शन। जब मुझे ये पता लग गया कि मैं वास्तव में क्या हूं। देखिए, बाहर हम किसी की बैकिंग हो सकती है, किसी की सपोर्ट हो सकती है, लेकिन जो शक्तियां जो हमें अपने चिंतन से मिलती हैं, अपने अनुभव से मिलती हैं, अपने प्रयास से मिलती हैं, वो जीवन का अंग बन जाता है। अगर हम मुश्किल परिस्थितियों में शांत रहना सीख लें, मुश्किल परिस्थितियों में हम स्थिर रहना सीख लें, तो उसको क्या कहते हैं? हम कहते हैं आम भाषा के मन जीते जगत जीत। तो वो सेल्फ मास्टरी है। वो सेल्फ मास्टरी तब आती है जब हम अपने आप को रियलाइज करते हैं। जब वो जैसे बहन जी ने कहा कि कनेक्ट करते हैं सर्वोच्च सत्ता से। अब देखिए ये बहुत सहज बात है, एक संकल्प की बात है। इस संकल्प को रियलाइज करना कि मैं ये स्थूल शरीर नहीं हूं, चैतन्य आत्मा हूं, इस बात के महत्व को जानना। क्योंकि ये तो हम सब बचपन से सुनते हैं कि आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। जब कोई शरीर छोड़ता है तो हम कहते हैं वो चला गया, कौन चला गया, वो भी समझते हैं कि वो आत्मा जाकर पुनर्जन्म लेगी। लेकिन जो बात सुनीता मैन ने भी कही बहुत वो है, उन्होंने कहा कॉन्शियस, लेकिन मैं कहूंगा सोल कॉन्शियस लीडरशिप की जरूरत है यहाँ। अभी तक हम जो भी कार्य करते रहे वो देह अभिमान के वश करते रहे, बॉडी कॉन्शियसनेस के वश करते रहे। आज जरूरत है सोल कॉन्शियस लीडरशिप की, कि हम अपने आप को लीड करें, केवल अपने आप को आत्मा जाने नहीं लेकिन आत्मा समझकर हर कर्म करें, हर कदम उठाएं, तो देखिए कितना परिवर्तन आएगा, कितनी रेजिलेंस आएगी, कितनी कंपैशन आएगी, कितना करेज आएगा। क्योंकि देखिए हर चीज के लिए हमें कदम कदम पर एक निर्णय लेना पड़ता है। उस निर्णय लेने के लिए भी कभी कभी हम उलझ भी सकते हैं, कभी कोई प्रलोभन भी हो सकता है, कभी कोई दबाव भी हो सकता है। लेकिन अगर हमारी आत्मा शक्तिशाली है तो हम इन सभी चैलेंजेस को पूरा कर सकते हैं, कभी परिवार की तरफ से भी हो सकता है। तो पहले तो मैं ये कहूंगा पहला कदम तो किसी भी प्रोफेशन के लिए, चाहे पत्रकारिता है, चाहे बिजनेस लीडर्स हैं, चाहे पॉलिटिशियंस हैं या डॉक्टर्स हैं, सबसे पहला तो यही है कि अपने आप को सशक्त करना, सेल्फ एम्पावरमेंट है। और वो सेल्फ एम्पावरमेंट थोड़ा सा समय लेकर लेकर, सुबह सुबह का समय खास होता है, थोड़े से समय में साइलेंस में बैठें, चिंतन करें, कुछ अध्ययन करें, वो समय अपने लिए होता है। फिर हमें अपनी फिजिकल हेल्थ पर भी ध्यान देना होता है, उसके लिए भी थोड़ा हमें करना पड़ता है, एक्सरसाइज करें, वॉकिंग के लिए जाएं, प्राणायाम करें, वो सब चीजें जो है ना वो हमें एक शक्ति देती हैं। सारा दिन हमको काम करना है, कभी कभी मैं सुनता हूँ कि आप लोगों को रात को 12 बजे तक भी जागना पड़ता है, न्यूज डेस्क पे बैठना पड़ता है, तो कहने का भाव ये सारी ताकत आएगी कहाँ से? नहीं तो फिर वो जो बर्न आउट होता है, आदमी थक जाता है, हार जाता है। लेकिन हमारा जो ये आपका जो प्रोफेशन है उसमें थकने की तो मना है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है, 7x24 hours है, 365 days है। तो इसलिए हम लोगों को अपने आप को सशक्त करने के लिए आध्यात्मिक शक्तियों की जरूरत है। वो शक्तियां रेजिलेंस की हो सकती है, वो शक्ति करुणा की हो सकती है, वो शक्ति संतुष्टता की हो सकती है, वो शक्ति निर्णय करने की हो सकती है। कभी कभी हमें लोगों के सामने अपने आप को तैयार करना पड़ता है। हम अपने आप को कैसे सुने को भी अनसुना करते हैं, कभी कभी सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं, तो वो सब शक्तियां तभी आएंगी। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का उद्देश्य यही है कि सभी व्यवसायों में स्पिरिचुअलिटी की ब्लेंडिंग हो। अगर आध्यात्मिकता सही मानों में हमारे जीवन में आ जाए तो उसमें आनंद ही बहुत है। केवल आध्यात्मिकता व्यवसाय के लिए नहीं है लेकिन परिवार के लिए भी है। परिवार में भी हम समझते हैं, उनको भी हमें कभी कभी उठाने की जरूरत होती है, सशक्त करने की जरूरत होती है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि ये जो आप यहाँ पधारे हैं, ये एक अपॉर्चुनिटी है, आप इन 3 दिनों में अनुभव करें कि आध्यात्मिकता क्या है और आध्यात्मिकता मेरे लिए रेलेवेंट कैसे है। प्रोफेशन के लिए तो बाद में है, पहले मेरे लिए इसकी क्या रेलेवेंस है। अगर मैं उसको समझ जाता हूँ तो हमारा लक्ष्य भी पूरा होगा और आपका आना भी सफल होगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि मुझे आज आप सबसे मिलने का अवसर मिला और अपने विचार आपसे साझा करने का मौका मिला। मैं यही कहूंगा कि स्व परिवर्तन में ही विश्व परिवर्तन है, अपने जीवन को बनाने में ही हम पूरे समाज को बना सकते हैं, लेकिन पहले अपने प्रति अपनी जिम्मेवारी को पहचाने। धन्यवाद।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके शब्दों ने दिया हमें नया प्रकाश, मिला हमें अमूल्य आत्मविश्वास। हृदय से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया। और अभी हम इस इनसाइट सेशन की समाप्ति की ओर है। इसमें क्वेश्चन आंसर का भी कुछ वक्त था, लेकिन मुझे लगता है वो वक्त आगे बढ़ चुका है। और मैं उम्मीद करती हूँ, वैसे आज के जमाने में उम्मीद रखनी नहीं चाहिए, पर इस ईश्वरीय दरबार में मैं आप सबसे उम्मीद रखती हूँ कि शायद इतना सब सुनने के बाद आप सबके मन में कोई भी प्रश्न नहीं होगा। प्रश्न खत्म, सभी प्रसन्न चित हैं। मान लूं ऐसा? मान लूं? तालियां बजा के मुझे स्वीकृति दें। तो अगर फिर भी कोई प्रश्न हो तो हम अगले सत्र में रख सकते हैं। हमारे सभी महानुभावों का हम दिल से शुक्रिया करते हैं। अभी कुछ ही देर बाद एक कल्चरल बहुत सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन है जो ऊपर हारमोनी हॉल में होगा, इसलिए हम अगर प्रश्न उत्तर के सत्र को विराम दे सकते हैं आपकी स्वीकृति के अनुसार। आपके मन में कोई प्रश्न तो नहीं? थैंक यू। तो आज सवेरे के उद्घाटन सत्र में एक बुक लॉन्च हुई थी शायरियों से, तो मैं इस सत्र की समाप्ति उस बुक की एक शायरी से करती हूँ। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है, जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। आप वाह वाह कर सकते हैं। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे, गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे। सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। तो जोरदार मुस्कुराहट के साथ ताली बजाइए। और सभी का बहुत बहुत तहे दिल से हाथ जोड़कर मैं धन्यवाद करती हूँ। आप सबका भी तहे दिल से धन्यवाद है, क्योंकि आप हमारे इस सत्र की शोभा है, शान है। आप सबने बड़े धैर्य पूर्वक सुना, आप सबको भी हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रिया है। और अभी मैं हमारी बहनों से आग्रह करती हूँ कि मंचासीन हमारे महारत्नों को शॉल पहनाकर सम्मान करें, धन्यवाद करें। आप सबको भी दिल से धन्यवाद। प्रभु की स्मृति के साथ हम इस सत्र को यहीं विराम देते हैं, सुंदर घड़ी को विराम करते हैं। ओम शांति। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।